Iran Radio Podcast. दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। पंद्रहवीं सदी के आखिर में जब पुर्तगाली समुद्री रास्ते से पहली बार ईरान पहुंचे तो समय शाह इस्माइल सफवी एक छोटे बच्चे थे और उन्हें दुश्मनों के खौफ से एक टोकरी में रखकर छत से लटका दिया गया था। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 31वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे पुर्तगालियों के भारत पहुंचने की और साथ ही इस्माइल सफवी उस समय किस अवस्था में थे। तो इस्माइल सफवी के पूर्वज एक धार्मिक संगठन का नेतृत्व संभालते थे। इस संगठन के सभी सदस्य दरवेश और सूफी थे। लोग इन दरवेशों को तपस्वी मानते थे और उनका समर्थन करते थे। इस संगठन का नाम तरीकत सफविया था। इस संगठन के संस्थापक शेख सफीउद्दीन अर्दबीली थे जो इस्माइल के पूर्वजों में से एक थे। तरीकत सफविया के अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई, यहाँ तक कि इस्माइल के दादा और पिता ने एक स्वतंत्र शासन की स्थापना का फैसला कर लिया। इस निर्णय से ईरान और इराक के राजा क्रोधित हो गए और उनके दुश्मन बन गए। इस्माइल के दादा, पिता और बड़े भाई युद्ध में मारे गए और सफविया तरीकत के नेतृत्व की जिम्मेदारी अब 7 वर्षीय इस्माइल के कंधों पर आ गई। इस्माइल के पिता के कुछ करीबी दोस्त उन्हें गिलान ले गए और लाहिजान के शासक के घर में छिपा दिया जो सफवी दरवेशों का समर्थक था। जब भी राजा के सैनिक इस्माइल की तलाश में शासक के घर पहुंचते तो शासक कसम खाकर कहता था कि इस्माइल के पैर गिलान की जमीन पर नहीं है। दरअसल शासक झूठ नहीं बोल रहा था, उसने इस्माइल को एक टोकरी में रखकर कमरे की छत से लटका दिया था। जब इस्माइल की उम्र 12 साल हो गई तो उन्हें गिलान से बाहर निकाला गया। विभिन्न गांवों और शहरों से सफविया तरीकत के अनुयायी उनकी मदद के लिए इकट्ठा होने लगे। इस्माइल ने 2 बड़ी जंगों में अपने दुश्मनों को धूल चटा दी और 14 साल की उम्र में तबरेज में सफवी राजवंश की बुनियाद डाल दी। शुरुआत में ही इस्माइल ने जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले किए उनमें से एक शिया मत को ईरान का आधिकारिक धर्म घोषित करना था। ये एक ऐसा निर्णय था जिससे ईरान के पश्चिमी पड़ोसी उस्मानिया सल्तनत को सबसे ज़्यादा बुरा लगा। सुल्तान सलीम उस्मानी मुसलमानों का नेता होने का दावा करता था और इस बात से बहुत नाराज था कि उसके पड़ोसी देश में एक शिया शासन की स्थापना हो गई। इसीलिए शुरुआत से ही दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। उस्मानी सम्राट ने इस दुश्मनी के लिए शियाओं और सुन्नियों के बीच के अंतर को जिम्मेदार ठहराया, एक ऐसा मतभेद जिसका यूरोपीय देशों ने खूब फायदा उठाया। पुर्तगालियों का मानना था कि जिसके पास दुनिया के 3 बिंदु हों वो एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका पर शासन कर सकता है। फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ अदन और दक्षिण पूर्वी एशिया में मलक्का बंदरगाह, यही कारण था जो पुर्तगालियों ने इस्माइल के राज्याभिषेक के 5 साल बाद हुर्मुज द्वीप पर कब्जा कर लिया। उन वर्षों में हुर्मुज द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्रों में से एक था। इस द्वीप से सभी प्रकार की वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था। मिस्र, अरब, भारत और चीन से व्यापारी पूर्वी और पश्चिमी वस्तुओं का आदान प्रदान करने या खरीदने और बेचने के लिए अपने जहाज़ों के साथ इस द्वीप पर उतरते थे। ہرمز پر قبضہ کرنے کے بعد پرتگالیوں نے اس اسٹریٹ میں ایرانی جہازوں کے مارگ کو نینترت کرنا شروع کر دیا اور ہرمز کے شاسک کو شاہ اسماعیل کو دیے جانے والے کر کی تلنا میں 3 گنا ادھک کر دینے کے لیے مجبور کیا۔ جب شاہ اسماعیل کا دوت وارشک کر وصولنے کے لیے دویپ پر آیا تو پرتگالیوں کے ادھین شاسن کرنے والے دویپ کے ایرانی شاسک کو پتہ نہیں تھا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ پرتگالیوں نے شاہ اسماعیل کو بھیجنے کے لیے اسے کچھ توپ کے گولے اور بارود دیا۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ ایران کے شاہ کو لکھے کہ ہرمز پرتگال کا حصہ ہے اور ہم پرتگال کے راجہ مینول کو کر دیتے ہیں اور اس سے زیادہ ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پراچین کال میں ایرانیوں کے پاس ایک سنگٹھت نوسینا تھی، اس کے باوجود شاہ اسماعیل صفوی کے پاس نوسینا اور یدھپوت نہیں تھے۔ دوسری اور سلطان سلیم عثمانی اسے آئے دن صفوی شاسن کو یدھ کی دھمکی دے کر ڈراتا تھا۔ ایسی استھتی میں شاہ اسماعیل نے پرتگالیوں کا سامنا کرنے سے پرہیز کیا۔ جب پرتگالیوں کو احساس ہوا کہ شاہ اسماعیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو انہوں نے حملہ کر دیا اور ایران کے تٹ کے دوسرے حصے پر قبضہ کر لیا۔ سمندر تٹ کے اس حصے کو جیرون کہا جاتا تھا، جو بعد میں بندر عباس کے نام سے جانا جانے لگا۔ شاہ اسماعیل نے پرتگالیوں کے قبضے کی تلنا میں سلطان سلیم کے خطرے کو زیادہ گمبھیرتا سے لیا، حالانکہ ان کا آکلن غلط نہیں تھا۔ سلطان سلیم عثمانی نے 920 ہجری میں 100,000 سینکوں کے ساتھ ایران پر حملہ کر دیا۔ شاہ اسماعیل نے پشمی آذربائیجان کے چالداران میدان میں اپنی 40,000 سینکوں کی سینا کے ساتھ اس کے خلاف مورچہ سنبھال لیا۔ اس یدھ میں ترک سینا نے اپنے ساتھ ایک بڑا توپ خانہ لانے کا فیصلہ کیا تھا جو اسے پرتگالیوں نے دیا تھا، لیکن ایرانی سینا کے سوار توپوں کے استعمال کو بزدلی مانتے تھے۔ ایرانیوں کا ماننا تھا کہ وہ کائر سینک جو آمنے سامنے دشمن سے نہیں لڑ سکتے وہی توپ خانے کی شرن لیتے ہیں۔ چالداران کی لڑائی میں ایرانی گھڑ سوار غضب کا ساہس دکھاتے ہوئے جیت کے بہت قریب پہنچ گئے، لیکن اسی سمے سلطان سلیم نے توپوں سے گولہ باری شروع کرنے کا آدیش دیا۔ ترک سینا نے ایرانی سینا اور اپنے کچھ سینکوں پر گولہ باری شروع کر دی اور ایرانی سینکوں کے ساتھ ہی اپنے سینکوں کے ایک سموہ کو بھی مار کر یدھ کا رخ اپنے پکش میں موڑ لیا اور ایرانی سینا کو ہرا دیا۔ اس جیت کے بعد عثمانی سینا ایران کے اندر آگے بڑھی اور کچھ دنوں کے لیے تبریز پر اس نے قبضہ کر لیا، لیکن ایرانیوں نے پیچھے ہٹنے کے دوران سبھی چراگاہوں اور کھیتوں میں آگ لگا دی اور سلطان سلیم کو اپنے سینکوں اور گھوڑوں کو بھوکمری سے بچانے کے لیے ایران چھوڑ کر اپنے دیش لوٹنا پڑا۔ ایک اور ایران اور عثمانی شاسن کے بیچ مت بھید بڑھ رہے تھے تو دوسری اور عثمانی شاسن یورپ میں اپنے شاسن کا وستار کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے کئی یورپی دیش عثمانی شاسن کے دشمن بن گئے۔ شاہ اسماعیل نے اس افسر کا لابھ اٹھانے کی یوجنا بنائی اور یورپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے پرتگالیوں سے بات کرنے کے لیے ایک دوت بھیجا اور اسے کہا کہ وہ اس شرط پر ہرمز دویپ چھوڑنے کو تیار ہیں کہ پرتگالی عثمانی شاسن کے خلاف یدھ میں ایران کا سمرتھن کریں۔ پرتگالیوں نے ایرانی شاسک کی شرط ماننے کے بجائے انہیں ایک اور پرستاؤ دیا۔ انہوں نے ایران سے بحرین دویپ کو اس کے کھیتر میں واپس لوٹانے میں مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ بحرین کی استھانی جن جاتیوں میں سے ایک نے ودروہ کر دیا تھا اور ایران سے اپنی آزادی کی گھوشنا کر دی تھی۔ پرتگالیوں نے بحرین میں پرویش کیا اور اس جن جاتی کا دمن کر دیا، لیکن اس دویپ کو ایران کو نہیں سونپا۔ شاہ اسماعیل کو اور ادھک نراش نہ کرنے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر عثمانی شاسن اور ایران کے بیچ لڑائی چھڑتی ہے تو وہ ایران کی مدد کرنے کے لیے یدھ میں پرویش کریں گے، لیکن شاہ اسماعیل کے جیون کے انت تک کوئی یدھ نہیں ہوا۔ اس کے 10 سال بعد شاہ اسماعیل کی موت ہو گئی، جس کے بعد شاہ تہماسب ان کے اتراधिकारी بنے۔ انہوں نے عثمانی سامراجی کے حملوں سے بچنے کے لیے صفوی شاسن کی راجدھانی کو تبریز سے قزوین استھانانترت کر دیا۔ اسی دوران دنیا کے دوسرے کونے میں اسپینش اور پرتگالیوں نے اپنی نئی جیت کے نشے میں دنیا کو آپس میں بانٹ لیا اور انیہ یورپی دیشوں کو سمندری مارگوں تک پہنچ سے ونچت کر دیا۔ انگریزوں نے کہ جو زمین کے راستے ویاپار کرنے پر مجبور تھے اپنا ایک پرتنیدھی ایران بھیجا۔ अंग्रेज व्यापारियों के एक समूह ने उत्तरी यूरोप और रूस के मार्ग से ईरान पहुंचकर गीलान से रेशम की खरीदारी की योजना बनाई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाह तैमास को एक पत्र लिखा और उनसे ईरान में अंग्रेज व्यापारियों के व्यापार का समर्थन करने के लिए कहा। ब्रिटिश प्रतिनिधि ने यह पत्र कज़्विन में ईरान के शाह को सौंपा, लेकिन शाह तैमास ने यह कहकर उसे अपने महल से बाहर निकाल दिया कि हमें काफिरों से दोस्ती की ज़रूरत नहीं। तहमास्ब ने उस्मानी शासन के साथ शांति स्थापित कर ली थी, इसलिए उन्होंने यूरोपियों के साथ संवाद की आवश्यकता महसूस नहीं की। दूसरी ओर उन्होंने सोचा कि रेशम व्यापार में यूरोपियों के प्रवेश से तुर्क मुस्लिम व्यापारियों को नुकसान होगा। तुर्क व्यापारी गीलान से रेशम को आधुनिक सीरिया के एक शहर अलेप्पो ले जाते थे और वहाँ से उसे यूरोप निर्यात करते थे, इसलिए ईरान के शाह उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। जब भी ईरान और उस्मानी शासन के बीच शांति होती थी तो यूरोपीय लोगों को ईरान में प्रवेश और पैर जमाने का अवसर नहीं मिलता था। लेकिन दो मुस्लिम देशों के बीच युद्ध और शियाओं और सुन्नियों के बीच मतभेद ने यूरोपीय लोगों को दोनों देशों में घुसने का अच्छा अवसर प्रदान कर दिया। उस्मानियों के साथ शांति शाह तहमास्ब के जीवन के अंत तक जारी रही। शाह तहमास्ब के बाद इस्माइल द्वितीय ने सिर्फ एक वर्ष तक शासन किया और उसके बाद शाह मोहम्मद तख्त पर बैठे। ये दोनों कमज़ोर शासक साबित हुए। इनके शासनकाल में ईरान में अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। उस्मानी साम्राज्य ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया और ईरान पर हमला कर दिया। शाह मोहम्मद ने उस्मानी शासन के हमले के खिलाफ इतनी कमज़ोर प्रतिक्रिया दिखाई कि मजबूर होकर उनकी पत्नी खैरुन्निसा महदुलिया ने ईरानी सेना की कमान संभाली और कॉकेशस तक उस्मानियों को पीछे ढकेला। महदुलिया ने ईरानी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन सेना के कमांडर युद्ध में हाथ लगने वाले माल को लूटने में व्यस्त हो गए और उन्होंने उनके आदेश का पालन नहीं किया। महदुलिया कज़्विन लौट गईं। सेना के वो कमांडर जो राजा से उनकी शिकायत को लेकर चिंतित थे राजा के पास गए और उलिया के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए और फिर कमज़ोर राजा के सामने उनका गला घोंट दिया। इन मतभेदों के कारण उस्मानी सुल्तान को अपनी सेना को पुनर्गठित करने का मौका मिल गया। उसके बाद उसने आक्रमण करके अजरबैजान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और तबरेज में पड़ाव डाल दिया। इस घटना के बाद तबरेज 20 वर्षों तक उस्मानी शासन के कब्जे में रहा। उसी दौरान उज़्बेकों ने उत्तर पूर्वी सीमा से ईरान में प्रवेश किया और खुरासान इलाके पर कब्जा कर लिया। तीन साल बाद शाह मोहम्मद ने गद्दी छोड़ दी और उनके स्थान पर उनके बेटे अब्बास ने सत्ता संभाल ली। शाह अब्बास को एक ऐसे देश की सत्ता मिली थी जिसके पश्चिम पर उस्मानी शासन ने कब्जा कर लिया था और उत्तर पूर्वी भाग पर उज़्बेकों ने अपने पैर जमा लिए थे। देश की सत्ता सेनापतियों के हाथों में थी और राजा को कोई अधिकार हासिल नहीं था। डाकुओं ने व्यापार के मार्गों को असुरक्षित बना दिया था और ईरान की कृषि और व्यापार सबसे खराब स्थिति में थे। अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में वो अपने पिता की तरह दुश्मन से लड़ने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उस्मानी शासन को शांति की पेशकश की। सुल्तान मुराद उस्मानी ने, कि जो यूरोप में युद्धों में व्यस्त थे, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस दर्दनाक शांति पर हस्ताक्षर के बाद शाह अब्बास को देश में कानून व्यवस्था स्थापित करने और सेना को मजबूत करने का मौका मिल गया। उज़्बेकों को हराने के बाद उन्होंने उस्मानियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 1012 हिजरी में तबरेज को आज़ाद करा लिया। उस्मानियों के साथ शाह अब्बास के युद्ध जारी रहे और 3 साल के अंदर हारे हुए ईरान के सभी इलाके वापस ले लिए गए। कब्जे वाले क्षेत्रों को मुक्त कराने के बाद शाह अब्बास ने ईरान की आंतरिक स्थिति को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। कबायली नेताओं की शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने सड़कों पर सुरक्षा लौटाई, कई कारवांसराय सड़कों और पुलों का निर्माण किया और कृषि और रेशम उत्पादन उद्योगों का समर्थन किया। ईरान में व्यापार और उद्योगों की प्रगति के कारण यूरोपीय ईरान को अलग दृष्टि से देखने लगे। अब वे ईरान को एक ऐसे देश के रूप में देखने लगे जो उस्मानी साम्राज्य के खिलाफ युद्ध कर सकता था और उसे हराने की भी क्षमता रखता था। इस तरह से उस्मानी सेना का ध्यान यूरोपीय मोर्चों से हट सकता था। ईरान के साथ व्यापार से उन्हें फ़ायदा भी हो सकता था। ईरानी सफवी शासक ने अपनी राजधानी कज़्विन से इस्फहान स्थानांतरित कर दी। यह शहर कई देशों के व्यापारियों के लिए केंद्र बन गया। शहर के मुख्य चौराहे पर ईरानी, भारतीय, मिस्री, रूसी, जर्मन, स्पेनिश, चीनी, अरब, पुर्तगाली, डच, इतालवी और फ्रांसीसी व्यापारी एक दूसरे से मिलते थे और व्यापार करते थे। एक फ्रांसीसी यात्री जो कई वर्षों तक ईरान में रहा, अपने स्मरणों में लिखता है कि दरबार में आयोजित एक सभा में 12 भाषाएं बोली जाती थीं। ईरान और अन्य देशों के बीच माल का व्यापार और व्यापारियों की आवाजाही इतनी अधिक थी कि भारत से ईरान आने वाले कारवां में से केवल एक में लगभग 10,000 ऊंट शामिल होते थे। एक अन्य यात्री ने शाह के खजाने के बारे में लिखा कि खजाने में मैंने हीरे के 600 बैग देखे। यहाँ फिरोजे के टुकड़ों को ढेर बनाकर रखा गया है। मेरे और खजांची के बीच इतने फिरोजे थे कि हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। सोने से भरे प्रत्येक चमड़े के बैग का वजन 20 से 25 किलो के बीच था। अधिकांश बर्तन, यहाँ तक के बाल्टियाँ भी सोने की थीं। शाह एक प्रकार की हरी चीनी मिट्टी के बर्तन में खाना खाता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि खाने का रंग बदलने से पता चल जाता है कि खाना जहरीला है या नहीं। यूरोपीय यात्रियों द्वारा अपने यात्रा वृत्तांतों में ईरान की आर्थिक समृद्धि और धन के वर्णन के बाद यूरोपीय व्यापारी और सरकार ने पहले की तुलना में ईरान की ओर अधिक आकर्षित हुए। निसंदेह पर्यटकों की रिपोर्टें ईरान की अर्थव्यवस्था की समृद्धि के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को बयान करती थीं। यूरोपीय व्यापारियों ने अधिक जानकारी स्थानांतरित करके अपनी सरकारों को ईरान के साथ संवाद और व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया।